हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 412। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, सुनैना को उस बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो अवंतिका से एकदम नॉर्मल तरीके से ही बात कर रही थी। लेकिन अवंतिका को सुनैना के मेमोरी लॉस और उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसे लगा कि सुनैना उसका मजाक उड़ा रही है। इसीलिए अवंतिका गुस्से में आगे आई और उसे धक्का देते हुए वहां से आगे निकल गई और बोली, ब्लडी बिच, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अवंतिका के धक्के से सुनैना थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही संभल गई। उसे अवंतिका का ऐसा बर्ताव बहुत ही अजीब लगा और वो हैरानी से उसे वहां से जाते हुए ही देख रही थी। उसकी तरफ देखते हुए सुनैना ने अपने आप से कहा, क्या हुआ इसे ऐसे अचानक से? बदतमीज तो ये हमेशा से ही थी, लेकिन कभी सीधी तरह तो इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मतलब पढ़ने पर तो ये हमेशा खुद से बोलती थी, लेकिन आज? इतना बोलते हुए सुनैना उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी सुनैना की फ्रेंड वहां पर उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ सुनैना, तुम अभी तक यहाँ पर ही खड़ी हो, एग्जाम कैसा हुआ? सुनैना ने अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर कहा, हाँ ठीक हुआ, तुम बताओ। और फिर वो दोनों बात करते हुए वहां से कॉलेज के गेट के पास ही आ गईं। सुनैना वहां पर आसपास नजर घुमाते हुए आदित्य को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे पता था आदित्य वहीं कहीं पर ही होगा, क्योंकि आदित्य ने उसे कहा था वो उसे अकेले छोड़कर घर वापस नहीं जाएगा और उसे साथ लेकर ही जाएगा, इसीलिए ही सुनैना उसे ढूंढ रही थी। तभी उसे वहां पर अपनी कार दिखी जिससे वो दोनों वहां पर आए थे। ये देखकर सुनैना अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर कार की तरफ जाने लगी। उसकी फ्रेंड भी आगे अपने रास्ते चली गई। सुनैना जैसे ही कार के पास पहुंची, उसे वहां पर आदित्य नजर नहीं आया, तो उसने क्यूरियस होकर कार के पास पहुंचकर उसके अंदर झांक कर देखा, लेकिन आदित्य कार के अंदर भी नहीं था। तो सुनैना थोड़ा सा परेशान हो गई और फिर इधर उधर देखते हुए खुद से ही बोली, कहाँ चला गया ये, कार तो यहीं पर ही है, मुझे बताकर भी नहीं गया कि कहाँ पर वेट करेगा। इतना बोलते हुए उसने इधर उधर देखा तो उसे वहीं थोड़ी दूर कॉलेज की बाउंड्री के वॉल से टेक लगाकर खड़ा आदित्य नजर आया। आदित्य वहां पर इसलिए खड़ा था क्योंकि वहां पर इतनी धूप नहीं थी, वो वहां पर खड़े होकर अपने फोन में कुछ कर रहा था। सुनैना ने उसकी तरफ देखा, आदित्य उससे काफी दूर था इसीलिए उसने उसे आवाज नहीं लगाई बल्कि उसकी तरफ जाने लगी। वो अभी दो कदम चली ही थी कि तभी उसने देखा कि आदित्य जहां पर खड़ा था कॉलेज के उस साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पर आदित्य इन सब से बेखबर सिर्फ छांव की वजह से वहां पर खड़ा हुआ था। सुनैना ने जब उसे उस जगह पर देखा तो उसे पता नहीं क्यों पर थोड़ा सा अजीब लगा, तो वो परेशान होकर आदित्य का नाम लेकर उसे बुलाने लगी, लेकिन सुनैना की आवाज इतनी तेज नहीं थी इसीलिए आदित्य ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तो सुनैना अपना मुंह बनाते हुए उसकी तरफ पढ़ने लगी, मगर तभी उसका ध्यान आदित्य के गया जहां से एक बड़ा सा पत्थर जो कि घर बनने में यूज होता है, उस बड़े से पत्थर को अभी क्रेन की मदद से ऊपर ले जाया ही जा रहा था कि तभी वो साइड वाली दीवार से टकरा जाता है और उसका एक टुकड़ा लगभग टूटने ही वाला था। और सुनैना की परेशान होने वाली बात ये थी कि उसके नीचे ही आदित्य खड़ा हुआ था, शायद वो फोन में कुछ ज्यादा ही बिजी था जिस कारण उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्रेन खड़ी हुई थी। वो इन सबसे बेखबर अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ था, लेकिन सुनैना ने जैसे ही ये देखा उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती हैं। एक पल के लिए तो उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था, मगर जैसे ही उसे होश आया वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आदित्य का नाम लेते हुए उसकी तरफ दौड़ी। आदित्य, सुनैना की आवाज़ सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो वो एकदम हैरान हो गया क्योंकि सुनैना उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। ये देखकर आदित्य की भौहें से कुड़ जाती हैं। वो थोड़ा कन्फ्यूज भी था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुनैना इस तरह से भागते हुए उसकी तरफ क्यों आ रही है। वो हैरानी से सुनैना की तरफ देख ही रहा है कि तभी उसके पीछे से एक तेज आवाज के साथ वो पत्थर का टुकड़ा टूटकर उसके सिर पर गिरने ही वाला था कि तभी आदित्य ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा क्योंकि उसने सुनैना के चिल्लाकर की आवाज सुन ली थी। आदित्य जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ ही गिर रहा था। ये देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और फिर वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए वहां से हटने लगता है, लेकिन सुनैना अब तक वहां पर पहुंच गई थी इसीलिए उसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आदित्य कुछ रिएक्ट ही नहीं कराया और लड़खड़ाते हुए सुनैना की तरफ गिरने लगा, तो सुनैना भी आदित्य को संभाल नहीं पाई और अगले ही पल दोनों जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरते ही सुनैना की आंखों के सामने वो सीन आने लगा जब पिछली बार विराज ने एक पत्थर से आदित्य पर हमला करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त उसने आदित्य को तो बचा लिया था पर खुद को नहीं बचा पाई थी क्योंकि वो पत्थर आदित्य को बचाते वक्त उसे लग गया था जिसकी वजह से ही उसकी याददाश्त में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी उसने जैसे ही ये सब कुछ दोबारा से होते देखा तो उसे सब कुछ एकदम ही याद आने लगा और वो सब याद करके बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। इस वक्त सुनैना और आदित्य दोनों ही जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन सुनैना आदित्य के नीचे थी इसीलिए उसका सर जमीन से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। उसे इस तरह बेहोश देखकर आदित्य एकदम से ही घबरा गया था इसलिए जल्दी से उठकर सुनैना को उठाने की कोशिश करते हुए घबराकर बोला, सोना सोना उठो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? मुझे बचाने के लिए हर बार खुद की जान खतरे में क्यों डालती हो? मैं कभी भी खुद को माफ नहीं पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो। सोना प्लीज उठ जाओ सोना। आदित्य सोना को बेहोश देखकर हद से ज्यादा घबरा गया था। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर सुनैना ने अपनी आंखों नहीं खोली। ये देखकर आदित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर से वार कर दिया हो। वो सुनैना की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। वहीं सुनैना शायद शॉक की वजह से बेहोश हो गई क्योंकि उसे जमीन पर गिरने से ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन आदित्य ये समझ नहीं पाया। उसे लग रहा था कि सुनैना को जमीन पर गिरने की वजह से चोट लग गई है, इसीलिए ही वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुनैना अभी भी बेहोश थी। देखते ही देखते वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी। जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम देकर निकले थे और वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर भी, वो वहां सब आसपास ही इकट्ठा हो गए थे और उन लोगों ने परेशान होकर आदित्य की तरफ आते हुए पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? और इन्हें क्या हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? उस वर्कर की बात सुनकर आदित्य ने नजर उठाकर उन लोगों की तरफ देखा और फिर घबराते हुए बोला, पता नहीं क्या हुआ मेरी सोना को, वो एकदम से ही बेहोश हो गई। मुझे बचाने की वजह से ये सब कुछ मेरी वजह से ही होता है। उन सभी से इतना कहते ही आदित्य अपनी आदत के हिसाब से फिर से खुद को ही ब्लेम करने लगा। सोना को इस हालत में देखकर आदित्य की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। ये देखकर वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला।
तो फिर आदित्य ने सुनैना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपनी कार तक पहुंचा। और कार में आज उसके साथ ड्राइवर भी नहीं है, तो उसने सुनैना को आगे की सीट पर ही अपने साथ बिठाया। वो अभी भी बेहोश है, तो आदित्य ने सीट बेल्ट उसे कसकर बांधी और फिर खुद अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। और फिर उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगा लिया था। उसने रास्ते में ही अपने असिस्टेंट नदीम से डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए कहा। वो बार बार ड्राइव करते हुए अपने साइड में लेटी हुई सुनैना की तरफ भी देखता जा रहा है, जिसकी वजह से उसका ध्यान सामने सड़क की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें सोना, तुम ठीक हो जाओगी। इतना कहकर उसने एक नज़र सुनैना पर डाली और फिर कार की स्पीड तेज कर दिया। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ तो उसने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। वो ब्लूटूथ से ही बात करने लगा तो नदीम ने उसे बताया कि डॉक्टर अभी हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और वो रास्ते में है तो उसकी घर पर आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर सुनैना को देखते हुए आदित्य ने सर्द आवाज में कहा, ठीक है, मैं सोना को घर लेकर पहुंचता हूँ, लेकिन डॉक्टर को लेकर तुम आ जाना। आदित्य ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए और नदीम ने भी उसकी बात सुनी। फिर आदित्य सुनैना के साथ अपने घर के लिए ही निकल गया। कॉलेज से उसके घर का रास्ता उतना ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो लोग जल्दी ही पहुंच गए। सुनैना अभी भी बेहोश थी और बेहोशी की वजह से उसकी गर्दन एक तरफ हो गई थी। उसे ऐसी हालत में देखकर आदित्य को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से उसे बचाने के लिए ही सुनैना ने ये सब कुछ किया। वो इस बात को लेकर काफी गिल्ट में था। दूसरी तरफ अक्षत का बंगला। आज नैना और विवान की मूवी का VIP प्रीमियर था, जिसमें काफी सारे लोगों को इन्वाइट किया गया था और अक्षत भी उन लोगों में से एक था। उसके पास प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ही VIP इन्वाइट आया है, VIP इन्विटेशन आया है, जिसकी वजह से उसके पास एक अच्छा बहाना है अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड की मूवी प्रीमियर पर जाने के लिए। और वो तीनों एक साथ ही वहां पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वहां पर जाने के लिए अक्षत ने पहले ही काफी कुछ प्लान कर रखा है और इस बारे में वो अभी निकलने से पहले अपने असिस्टेंट अजय से बात कर रहा है। अच्छा अजय, तुम ये बताओ, सारी तैयारियां हो गई है ना? वो रागिनी भी वहां पर आएगी ना? इन्विटेशन पहुंच गया है ना उसके पास? अक्षत की बात सुनकर अजय ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, आप इतनी फिक्र मत करिए, मैंने सारा इंतजाम अच्छे से अरेंज कर दिया है और हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया है।